And I, the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, am called Adi Yagna, the Lord of Sacrifice. Om Agnanati Mirandhasya Jnananjana Salakya Chukchur Umrita Mimam Tasme Sri Guru Venama Sri Chaitanya Manu Vishtam Sthapitam Yena Bhutare Swayam Rup Kadhamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Padakamlam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagar Jatam Sahagam Raghunatam Itam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagam Sri Visakhan Vitam Sajam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shemate भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमः ओम विष्णु। तो क्या है, अलग अलग प्रश्न क्या है, छह प्रश्न क्या पूछे अर्जुन ने?
ब्रह्मन कौन है,
ब्रह्मन कौन है, और सेल्फ नहीं, एग्जैक्ट प्रश्न क्या पूछे?
ब्रह्मन क्या है, अध्यात्म क्या है,
ब्रह्मन क्या है,
अध्यात्म क्या है,
कर्म क्या है, तीसरा यता होगा तभी तो उत्तर जानने की इच्छा। आदि यज्ञ क्या है, आदि देव, आदि भूत क्या है, अंतिम मरने के समय क्या प्रसाद चाहिए?
मरने के समय आपको किस रूप में करता
होगा? हाँ, मन में आपका स्मरण कैसे किया जा सकता? तो भगवान उसका उत्तर बता रहे हैं, और ये उत्तर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सारी परिभाषाएं आ रही हैं, सारी डेफिनेशंस आ रही हैं। इतनी की वजह से लोग अपने आप को सोचते हैं हम आध्यात्मिक हैं, या हम भक्ति कर रहे हैं, या हम किसी संस्था से जुड़े। गीता क्या है, जिसमें भगवान शब्दों को भाषित कर रहे हैं, हर शब्द की क्या परिभाषा है वो जानना जरूरी है, क्योंकि शब्दों को सभी उपयोग करते हैं। बोलता है मैं बहुत सुखी हूं, बोलता मैं तो बहुत दुखी, बोले मैं संसार में फंसा, बोले माया, बोलता मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत गरीब हूँ। तो ये शब्द तो सब परिभाषा क्या, क्योंकि अगर परिभाषा पता है तो उस परिभाषा मतलब दृष्टिकोण है ना। जैसे जो ऋषि शब्द है, ऋषि, ऋषि शब्द किससे, ऋक् धातु, ऋक् मतलब देखना, देखना किससे, किसी में शास्त्रों से, शास्त्र चक्षु है ना, जो तो किससे देखता है, आंखों से। अब मनुष्य भी केवल अगर आंखों से देखा गया तो क्या होगा, उसमें तो वास्तव में मनुष्य कब है, जब साथ देखना चालू करता है, इसीलिए बोलते हैं साथ चक्षु। अध्यात्म की परिभाषा क्या है, किसको बोलेंगे अध्यात्म, किसको अध्यात्म बोले? क्योंकि अगर परिभाषा नहीं पता है तो हम अपने मन से कुछ भी करते रहेंगे और मान लेंगे हम तो ये कर रहे हैं। अगर हमको सुख दुख की परिभाषा नहीं पता है तो हम जैसे लोगों के मन में सुख और दुख की धारणा है, वही धारणा हम अपने आप अपने को स्वीकार कर लेंगे। हमें पता नहीं होगा वास्तव में सुख क्या है, वास्तव में दुख क्या है, यही नहीं पता होगा, करेक्ट। तो अध्यात्म की परिभाषा क्या है हमें बता रहे हैं, तीसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, जो हमारा स्वभाव है वो अध्यात्म है, जो हमारा वास्तविक स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते हैं। तो जो वास्तविक स्वभाव में लौटने का प्रयास कर रहा है वो अध्यात्म रास्ते पर है, और जो वास्तविक स्वभाव में लौटने का प्रयास नहीं कर रहा है वो अध्यात्म के रास्ते में नहीं है, है ना। कोई गरीबों को खाना दे रहा है, हॉस्पिटल खुलवा रहा है, उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उनको वास्तविक स्वभाव में कैसे लौटा जाए उसके बारे में कोई शिक्षा नहीं, तो वो क्या है? वो अध्यात्म नहीं है, एक सामाजिक कल्याण कार्य, वो कोई आध्यात्मिक संस्था नहीं। एक्चुअली वो देखा जाए तो एक जो गवर्नमेंट है या राजा है उसका कार्य है कि समाज में कुछ इस तरह के वर्ग के लोग हैं जो भौतिक दृष्टिकोण से गरीब हैं, तो उनकी जो मदद करना है वो एक गवर्नमेंट का काम, एक राजा का काम है ना। अगर राजा भगवान के नियमों के अनुसार कार्य करेगा तो गरीबी तो आएगी नहीं। तो अध्यात्म मतलब स्वभावो अध्यात्म उच्यते, अपने वास्तविक स्वभाव में वापस लौटना, उसको ही अध्यात्म बोलते हैं। हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास, है ना। जीव कृष्णदास करले विश्वास आर्त दुख नाई, भक्ति ठाकुर क्या बोलते हैं? जीव कृष्णदास करले विश्वास, अगर इतना हमको दृढ़ विश्वास हो गया कि जीव कृष्ण का दास है, कर ले विश्वास आर तो दुख नहीं, और किसी तरह का कोई दुख नहीं होगा। तो कोई हमको मिलता है और बोलता है हम भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, हम भी यहाँ पर जाते हैं, तो आप पूछिए अध्यात्म मतलब क्या होता है, आध्यात्मिकता मतलब क्या होता है, तो बता ही नहीं पाएंगे, वेग है ना, इधर उधर घुमाते रहेंगे, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता होगा अध्यात्म मतलब क्या है। फिर ब्रह्म है ना, अर्जुन ने पूछा ना, छह प्रश्न पूछे, तो पहला क्या, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म में क्या है, क्या है ब्रह्म? तो ब्रह्म की अधिकतर परिभाषा क्या है, ऐसे वेदांत सूत्र का पहला सूत्र क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब समय आ गया है किसके बारे में, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करने के। तो ब्रह्म क्या है, फिर दूसरा बताते हैं सूत्र, जन्मादे यस्य यथा, जिससे हर चीज की उत्पत्ति होती है वो क्या है, वो ब्रह्म है। वो कहां मिलेगी, वो तीसरा सूत्र है, शास्त्र योनित्वत्। वो ब्रह्म कहां से मिलेगा, शास्त्र की योनि से, शास्त्रों से ब्रह्म पता चले, है ना। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्मादि यस्य यथा शास्त्र योनित्वत्। तो एक ब्रह्म की क्या परिभाषा है, जिससे हर चीज की उत्पत्ति होती है वो ब्रह्म, मतलब कह सकते हैं क्रिएटर या कंट्रोलर या मेंटेनर, है ना। दूसरी क्या परिभाषा है, भागवतम का श्लोक है जिसमें बताया गया है, परम सत्य के तीन स्तर बताए गए। कहां से स्टार्ट होता है वो श्लोक, वदंती वदंती तत्त्वविदं यद् ज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दतः, है ना। तत्त्वविग् है, तत्त्वविग् मतलब जो तत्व को जानते हैं, उन्होंने बताया है कि जो परम सत्य है तीन स्तर में प्रकट होता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दतः। पहला है ब्रह्म, तो ब्रह्म की क्या परिभाषा हुई, परम सत्य का जो इम्पर्सनल फॉर्म है, निराकार रूप है, उसको ही ब्रह्म बोलते हैं, है ना। जैसे हमने कई बार उदाहरण देखा है कि कोई पहाड़ है, इसको हम बहुत दूर से देख रहे हैं, है ना, तो पहाड़ हमको कैसा दिखेगा, एक आकृति दिखेगी, है ना, और हरा हरा दिखेगा कुछ, तो वो जो क्या है, पहाड़ का इम्पर्सनल फॉर्म। लेकिन पहाड़ी के और नजदीक जाएंगे तो क्या होगा, पेड़ दिखना चालू होंगे, अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं, या जानवर दूर से देखेंगे, तो हम पहाड़ के और नजदीक, तो वो परमात्मा, और जब पहाड़ पे ही आ गए तो हमें पहाड़ एकदम हर चीज स्पष्ट हो गई। तो एक ही पहाड़ को जब हम अलग अलग डिस्टेंस से देखते हैं तो उसके अलग अलग हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो परम सत्य के हम जितना नजदीक है उतना हम डिटेल नॉलेज मिल जाए, परम सत्य से दूर है तो ब्रह्म ज्ञान, और नजदीक गए तो परमात्मा ज्ञान, और नजदीक गए तो भगवान। तो ब्रह्म की क्या परिभाषा हुई दूसरी, कि जो परम सत्य है उसका निराकार रूप क्या है, ब्रह्म, है ना। और ब्रह्म क्या है, शंकराचार्य ने बोला ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन ब्रह्म है क्या वो डिफाइन नहीं हुआ। तो भगवान क्या बता रहे ब्रह्म क्या है, अक्षरम ब्रह्म परमम। अक्षरम मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, तो जो अक्षर है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, ब्रह्म परमम, परमम मतलब जो प्रकृति के तीन गुण से ऊपर है। तो जो जीव है, जो शुद्ध जीव है, लिबरेटेड सोल जो है, जिसका कभी जो नष्ट नहीं होता है और जो प्रकृति के तीन गुण से ऊपर है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। ये ब्रह्म की परिभाषा। तो जो स्पिरिचुअलिटी है वो कोई वेग नहीं है, कोई स्पेकुलेशन का सब्जेक्ट नहीं है कि हम हमारे मन में जैसा भी आया कुछ भी कर लिया, है ना। इसलिए प्रभुपाद ने क्या बोला, नेक्टर ऑफ डिवोशन द साइंस ऑफ कंप्लीट भक्ति योग, है ना। तो ये भक्ति क्या है, साइंस है, विज्ञान है। तो हर चीज का क्या है यहाँ पर एक डेफिनेशन, एक परिभाषा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर एक वैष्णव डिक्शनरी लिखना चाहते थे, है ना। एक वैष्णव डिक्शनरी होना चाहिए जिसमें हर चीज को परिभाषित किया है ना। अगर आप इंटरनेट पर डालेंगे स्पिरिचुअलिटी तो इतनी सारी परिभाषा आ जाएंगी, लेकिन जो एक्चुअल परिभाषा है वो नहीं आएगी। वो आएगी भी तो बहुत सारी परिभाषाओं मिक्स होगी, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे एक्चुअल है क्या। हम ब्रह्म डालेंगे तो ज्यादातर वही आ जाएगा, वो निराकार ब्रह्म और उसमें मर्ज होना है, सबको एक समझना है, वो आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट परिभाषा क्या है वो। तो इसीलिए वैष्णव डिक्शनरी होना बहुत जरूरी है, वैष्णव समाज, जिसमें हम एक्चुअल में समझ पाए इस शब्द भक्ति कर रहे हैं क्या, भक्ति मतलब क्या कर रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहा है तो एडवांसमेंट के लक्षण क्या है, एडवांसमेंट का पैरामीटर क्या है, वो हर चीज शास्त्र में डिफाइन है। फिर आगे कर्म, कर्म किसे बोलते हैं, पहले हो गया ब्रह्म, दूसरा हो गया अध्यात्म, तीसरा होगा कर्म। आजकल जैसे बहुत प्रसिद्ध है कर्मी पूजा है, बस कर्म करो वही पूजा है। तो पहले पूजा क्या है उसकी परिभाषा जानना पड़ेगा, कर्म क्या है उसकी परिभाषा जानना पड़ेगा, और कौन सा कर्म पूजा है वो जानना पड़ेगा, है ना। तो अलग अलग कर्म क्या है, कर्म अकर्म और विकर्म। और कर्म में भी दो डिवीजन है, एक नैमित्तिक कर्म और एक आपातकालीन कर्म। तो ऐसे कर्म जो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है और जिससे क्या बनता है, एक प्रतिक्रिया बनती है, रिएक्शन बनता है, पुण्य, उसको पुण्य बोल सकते हैं। विकर्म क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध कर्म, पाप होंगे वो, है ना, शास्त्रों के विरुद्ध है तो पाप है। और अकर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार और जिसका कोई रिएक्शन नहीं बने। तो गहना कर्मणों गति, जो कर्म की गति वो क्या है, बहुत गहन है, उसके समझना बहुत मुश्किल है ना। ऐसे पूरा भगवान ने कर्म योग तीसरा अध्याय बताया, फिर तो पांचवा अध्याय बताया कृष्ण भावना भावित कर्म है। तो कर्म ऐसा नहीं कि हम भगवदगीता लेने गए, अरे हम तो भगवदगीता में तो कर्म बताया गया, कर्म प्रधान है, हम तो कर्म ही कर रहे हैं, तो भगवदगीता पढ़ने की क्या जरूरत है, कर्म है क्या पहले तो वो जानना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन है जो बहुत सबको लूटे जा रहा है, वो कर्म कर रहा है, तो वो कर्म नहीं है, किसके लिए कर्म कर रहा है। ये शब्द जो है हम वफादार है, बहुत वफादार है, ईमानदार, ईमानदारी की परिभाषा जानना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद स्टोरी बताते हैं ना, कई चोर हैं, सब चोरी करके आए एक इकट्ठे हुए और बोला चलो ईमानदारी से पैसा डिवाइड कर लेते हैं, है ना, ईमानदारी से पैसा हम डिवाइड कर लेते हैं। आपका जो पहला कार है वो शुरुआत ही गलत हो गई, आपने कितने ईमानदारी आपने दिखा दिया, उससे क्या है, चोरी है। तो भगवान बता रहे हैं ऐसे कर्म क्या, भूत भावोद भव करो विसर्गा कर्म संगीता। कर्म ऐसी एक्टिविटीज जिसको करने से हमारी दूसरा भौतिक शरीर बन रहा है, उसको बोलते हैं कर्म। इस तरह की क्रियाएं जिसको करने से हमारे और शरीर बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं, उसको बोलेंगे कर्म। जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि कैसे एक जीव है अलग अलग तरह की यज्ञ करता है, अलग अलग तरह की आहुति देता है, है ना, और कैसे इस भौतिक जगत में आता है, है ना। तो जब यज्ञ करता है, यज्ञ करने से वो कहाँ जाता है, स्वर्ग जाता है, है ना। स्वर्ग में रहेगा छीणे पंडे मृत्युलोक की विसंति, फिर नीचे आएगा, कैसे आता है, पहले बादलों में जाता है, बादल में जाता है, फिर बारिश होती है, बारिश के माध्यम से पानी की बूंद से पृथ्वी में जाता है, फिर पृथ्वी के माध्यम से जो फसल है बीज है उसमें जाता है, फिर मनुष्य उसको खाता है तो मनुष्य का जो वीर है उसमें वो आत्मा जो होती है वहां जाती है, और फिर मनुष्य के जो वीर है उससे माता के गर्भ में जाती है। तो कैसे स्वर्ग से उसका पतन हुआ और कैसे माता के गर्भ में आया, उसका पूरा एक उस साइकिल बताया, है ना। ऐसे अलग अलग तरह के यज्ञ हैं और फिर उससे वो स्वर्ग से वो माता के गर्भ में आता है। फिर अधिभूत, ये भौतिक जगत क्या है, संसार क्या है, संसार किसे बोलते हैं, ये जगत किसे बोलते हैं, गच्छति इति जगत, है ना। जो हमेशा चलता रहता है वो क्या है, संसार, जो हमेशा चलता है। तो संसार हमेशा चल रहा है, लेकिन किस वजह से चल रहा है, एग्जैक्ट उसका रूट कॉज क्या है, हम किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे संसार में फंसे हुए, किसने फंसाया हमको, कोई हाथ पकड़ के बैठ रखा है हमें, किसी ने बंद कर दिया, कैसे फंसे हैं, किसको हम एग्जैक्ट संसार किसे बोलेंगे, संसार की क्या परिभाषा है। जब तक हमारे मन में ये धारणा है मैं और मेरा, आमी और आमार, आमी और आमार, तब तक हम संसार में, और जिस दिन ये धारणा चली गई मैं और मेरा, उस दिन हम संसार से मुक्त हो गए। जैसे मैं मनुष्य, देवता, पशु, राजा, मैं ब्राह्मण हूं, पति, पत्नी, पिता, पुत्र, सुंदर, बदसूरत, गरीब, धनी, सुखी, दुखी, वीर, दुर्बल, ये सब क्या है, मैं। जैसे बकरी मैं करती रहती ना, हम भी मैं करते रहते हैं पूरे दिन भर, मैंने ऐसे किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हमारा आइडेंटिटी कार्ड बनता है ना, आधार कार्ड बनाने जाते हैं, तो आपका आइडेंटिटी क्या है, मैं ये शिवम रमानी, कहाँ से पता, ये फोन नंबर, ये लेकिन क्या है, ये हमारी वास्तविक आइडेंटिटी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, है ना। तो मैं और मेरा, तो मेरा घर, मेरा शरीर, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, रूप, मेरा वैराग्य, मेरा ज्ञान, मेरी संपत्ति, मेरा कर्म, मेरी जाति, ये सब क्या है, जहां भी मैं और मेरा आएगा वो क्या हो जाएगा, हम संसार में फंस गए। अभी क्या करें, हम कुछ बात करेंगे तो अभी किसने सेवा की, मैंने कहा सेवा तो मैंने ही किया है, या किसकी वस्तु है, तो हम बोलेंगे मेरी वस्तु है, तो ये मैं और मेरे से कैसे निकले, इस संसार से कैसे निकले, क्योंकि मैं और मेरा हर जगह है, अहम अमेति, है ना, ईश्वरो अहम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं और मेरा, और ये इसी को बोलते हैं मिथ्या अहंकार, इसी को बोलते हैं अहंकार, अहंकार, अहम मतलब मैं, कार मतलब कर्ता, मैं करता हूं, करता तो मैं हूं। अभी सुन कौन रहा है? आप ही लोग सुन रहे हैं और कोई सुन रहा है? खा रहे हैं, मैं खा रहा हूं, हम ही खा रहे हैं, कोई दूसरा तो खा नहीं रहा, खा रहा है। तो जो अहंकार, मैं करता हूं, इससे कैसे निकला जाए, या मैं और मेरे की भावना से कैसे निकलेगा? मैं और मेरे की भावना से कैसे निकले? और भगवान भगवद गीता ही बोलते हैं, कौन से श्लोक में बोल रहे हैं, अगर जो अपने आप को कर्ता मानता है तो वो अहंकारी। कौन सा श्लोक है? गुणई कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते, है ना? अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अपने आप को कर्ता समझता है वो क्या है? अहंकार विमूढात्मा है। तो करना तो है, तो भगवान 16वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं? प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, ये करना ये नहीं करना। और 30वें अध्याय में बोल रहे हैं कि जो अपने आप को समझता मैं करने वाला हूं वह अहंकार है, फिर क्या करे? एक जगह बोल रहे हैं जो अपने को सोचेगा करने वाला हूं तो अहंकार है, एक जगह बोल रहे हैं कि ये करो ये मत करो। तो भगवान, एक होता है प्राइमरी डूअर, एक होता है सेकेंडरी डूअर, प्राइमरी करता और सेकेंडरी करता। तो भगवान क्या है? प्राइमरी डूअर। हम लोग क्या है? सेकेंड। अगर भगवान किसी चीज को सैंक्शन नहीं करेंगे, भगवान इंद्रियों में शक्ति नहीं देंगे हमें समझने की, स्मरण शक्ति नहीं देंगे, तो हम क्या समझ पाएंगे? आज हम देख पा रहे हैं तो आंखों से तो हम देख रहे हैं, लेकिन उस देखने की प्रोसेस में कितनी सारी चीजें, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, फिर हमारा ब्रेन में फंक्शन है, फिर आंख का और ब्रेन से कनेक्शन है। अगर इतने सारे चीजें हैं उसमें से अगर किसी एक चीज में भी डिफेक्ट आ जाए तो हम नहीं देख सकते। तो हमें अपनी जो आंखों पे इतना गर्व है, वो गर्व का उसका क्या फायदा है ना? वो वास्तव में भगवान की कृपा से ही जीव कर्म है ना, अपनी क्रियाएं, उसका जो बल है, उसकी जो स्मरण शक्ति है, जो इंद्रियों का तेज है, वो सब किसकी वजह से होता है? भगवान की कृपा से ही होता है। और जब ये भूल जाता है कि सब भगवान की कृपा से नहीं है, ये भगवान की कृपा, भगवान का जो हाथ है वो देख नहीं पाता है, तब तो हमारे अंदर अहंकार आता है और हम संसार में फंस जाते हैं, मैं और मेरे में फंस जाते हैं। उस समय ही हम संसार में फंसते हैं। और जहां हम हर स्टेप पर ये देख पाते हैं, यस भगवान की कृपा के ही वजह से, कृपा की भी परिभाषा देखेंगे हम कि भगवान की कृपा के ही वजह से मैं हर चीज कर पा रहा हूं। अभी मैं बैठा हूं तो भी भगवान की कृपा से बैठा। कई लोगों का जन्म होता है जो पूरे जीवन भर भी बैठ नहीं पाते, पैरालिसिस हो जाता है ना, पूरे जीवन में लेटे रहते हो। तो बैठा भी हूं तो भगवान की कृपा से बैठा, मैं समझ पा रहा हूं तो भगवान की कृपा से ही समझ पा रहा हूं। जब हम ये भूल गए, बस जैसे बल्ब है, तो बल्ब का अपना कोई पावर नहीं है, क्योंकि वो पावर हाउस से जुड़ा हुआ है तो वो जल रहा है, और जैसे उसका पावर हाउस से कनेक्शन चला गया वैसे उसका जलना बंद हो जाएगा। तो मैं और मेरा कैसे हटाए? कृष्ण और कृष्ण का, गुरु और गुरु का, जब ये कॉन्सेप्शन आएगा तब मैं और मेरा हट जाएगा, तब इस संसार से निकल जाएगा, है ना? भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, एक उनका बहुत अच्छा वैष्णव गीत है, वो बोलते हैं, अमार बोलीते प्रभु आर किछु नाही, है ना? अमार बोलीते प्रभु आर किछु नाही, कि मेरा कुछ ऐसा है, ऐसा संसार में कुछ भी नहीं जिसको मैं अपना बोल सकूं। तुम्ही अमार मात्र पिता बंधु भाई, आप ही क्या है? मेरे पिता बंधु और भाई, है ना? बंधु दारा सुता सुता तब दासी दास, से ही तो संबंध सबे अमारा प्रयास, है ना? बंधु जो मेरे मित्र हैं, दारा मतलब पत्नी, सुत सुता पुत्र पुत्री, इनका कैसे संबंध है, ये वास्तव में सब आपके हैं और आपके हैं इसीलिए मेरा संबंध है, अगर वो आपके नहीं है तो मेरा कोई संबंध नहीं इनसे, है ना। तो फिर भक्तिवर ठाकुर बोलते हैं कि मैं ये जो घर है वो वास्तव में घर किसका है, ये आपका घर है और मैं इस घर का केवल एक रक्षक हूं, एक घर का क्या हूं, चौकीदार, गेट कीपर। तो जो चौकीदार होता है, चौकीदार क्या करता है, चौकीदारी करता है घर, लेकिन मालिक का है, करेक्ट। तो उसकी संपत्ति नहीं, वो तो मालिक की संपत्ति है। तो उसी तरह भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि मेरे जितने भी संबंध है, मेरे घर में जितनी भी संपत्ति है, मेरा जो घर है उसका केवल मैं एक चौकीदार हूं। और अगर इन सबका भगवान आपके साथ संबंध है भगवान, तो मेरा इनके साथ संबंध है, अगर इन सबका आपके साथ कोई संबंध नहीं है तो मेरा भी इनके साथ कोई संबंध नहीं है, तब हम मैं और मेरे से निकल जाए, नहीं तो मैं और मेरा तो हमको फंसा ले, है ना। मैं इस जाति का हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, है ना, मैं इस पोस्ट पर हूं, मेरे माता पिता, ये सब क्या है, ये सब संसार फंसे हुए। एक अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है तो एक कर्तव्य पालन से हमको बस अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी इंटरनली तो हमारा कोई संबंध नहीं है उनसे। अगर हम सोच रहे हैं उसी को बोलते हैं आसक्ति, उनका कृष्ण से संबंध नहीं है और हम उनसे संबंध बना रहे हैं और उसमें आसक्त हो गए तो मतलब हम फंसे हुए इस संसार में, फंसे हुए, उसी को संसार बोलते हैं ना। अभी कुंभ मेला चल रहा ना प्रयाग में, तो कई लोग छोड़ चले गए, है ना, संसार त्याग दिया, घर त्याग दिया और हिमालय में जाके तपस्या कर रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा रहे हैं, उनके ऐसे नाखून, उनमें आपस में क्या होती, प्रतियोगिता होती है किसकी जटा सबसे बड़ी है, किसने कितने समय से नहीं खाया, ये भी कंपटीशन। यहाँ कंपटीशन होता है किसने कितना खाया, देश में कंपटीशन हो रहा है किसने कितना खाया, वहां कंपटीशन हो रहा है किसने कितना नहीं खाया, कब से नहीं खाया, कितने दिन से नहीं सोया। आपने सब त्याग दिया, घर त्याग दिया, ऊपरी तौर से संसार त्याग दिया, लेकिन ये भावना नहीं त्यागी कि मैं कितना श्रेष्ठ हूं, वो भावना अभी भी है। तो क्या त्याग, कुछ नहीं त्याग, अभी भी वहां कंपटीशन चल रहा है। और जब आते हैं नीचे उतर के आते हैं कुंभ में, तो फिर अरे ये बाबा है ना, ये बाबा की जटा है इतने मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है, होता है आप न्यूज में देखिएगा ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, ये बाबा ने इतने समय से कोई कपड़ा पहने नहीं है और न्यूज में, तो ये कुछ बाबा या साधु का हम ये थोड़ी। तो मैं और मेरा, अब पूरे दिन में कैलकुलेट कीजिए कि कितना मैं और मेरा सोच पा रहा हूं और कितना मैं सोच पा रहा हूं कि कृष्ण कृष्ण का, गुरु या गुरु का, वैष्णव या वैष्णव का, कितना मैं इस चीज के लिए कॉन्शियस, इसी को बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। तो कृष्णा कॉन्शियस क्या है, ऐसा नहीं हाँ कृष्ण तो हमारे सपने में आते हैं, कृष्ण ने हमें हृदय से एक उपदेश दिया अभी मैं उसी को पालन कर रहा हूं, कृष्ण इतनी भक्ति करूंगा बस, कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं, गुरु मुझसे क्या चाहते हैं, भक्त मुझसे क्या चाहते हैं, ये इस चीज के लिए कॉन्शियस होना उसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण और कृष्ण। जब कोई भी हम स्टेप कर रहे हैं, है ना, जैसे सब सचिव बताते हैं कई बार अपने प्रवचनों में कि कोई भी हम क्रिया करें और इस समय अगर गुरु उपस्थित हैं तो वो इस क्रिया से प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, इस चीज को सोचकर हमें हमेशा अपनी एक्टिविटी करना है ना। कुछ भी आप जब कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं और मान लीजिए उस समय गुरु उपस्थित है तो हम किस तरह से व्यवहार करेंगे, वही व्यवहार हमेशा हमेशा होना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि यस, तब हम गुरु की उपस्थिति को समझ पाएंगे। जैसे श्री प्रभुपाद बोले कि अमेरिका में मैं कभी अकेला नहीं था, हमेशा गुरु मेरे साथ उपस्थित थे, गुरु संदेश के रूप में उपस्थित थे। तो उसी को कृष्ण के कृष्ण हमेशा मुझे देख रहे हैं, गुरु हमेशा मुझे देख रहे हैं, है ना। ये कोई ऐसा नहीं कि बस एक यूफोरिया टाइप में मन में सोच लिया हाँ कृष्ण देख रहे हैं, वास्तव में देख रहे हैं। अभी हम उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, वो अलग बात है। तो वो मैं मेरा से निकलने के लिए तो वो संसार से निकल जाएंगे, और सिंपल करेक्ट। फिर सक्सेस, लक्ष्य, सक्सेस की क्या परिभाषा है, किसको सफल व्यक्ति बोलेंगे, कौन है सफल? धीरूभाई मानित है ना, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल देते थे ना, पेट्रोल भरते थे, और धीरे धीरे इतना स्ट्रगल किया उन्होंने, आज देखो हर जगह उनका, हर किसी भी फील्ड में जाओ हर जगह जियो है ना, और रिलायंस के पेट्रोल पंप भी थे, बहुत सारे उनका इंडस्ट्रीज है, या टाटा, टाटा का भी हर जगह नाम है। तो ये सक्सेस, सफल व्यक्ति किसको सफल बोलेंगे, किस व्यक्ति को सफल बोलेंगे, ये सफलता की क्या परिभाषा, ये भगवद गीता में दी है, कौन है सफल। क्योंकि अगर हमको परिभाषा नहीं पता होगा और हमको दूसरी परिभाषा पता होगा तो हम उसके अनुसार चलेंगे, जो हमको परिभाषा दी गई है समाज के द्वारा उसी के अनुसार हम चल रहे हैं, वही हम, वही हमारा दृष्टिकोण। तो क्या है सफल की परिभाषा, क्या है भगवद गीता के छठे अध्याय में परिभाषा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। ऐसी चीज प्राप्त करना जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना रह जाए उसको बोलते हैं, वो चीज अगर प्राप्त हो गई उसको बोलते हैं सफल व्यक्ति। इस संसार में इस चीज को, ऐसी वस्तु को प्राप्त करना जिसको प्राप्त करने के बाद और कोई शेष इच्छा नहीं रह जाए, बस द रेमंड्स कंप्लीट मैन। आपने अगर ये गारमेंट पहन लिए तो आप कंप्लीट मैन हो गए, लेकिन वो गारमेंट भी चले गए नहीं जान समय है ना। तो ऐसा चीज प्राप्त करना उसको बोलेंगे सक्सेस। और नारद मुनि भी व्यास देव जी को बता रहे हैं भागवतम में, तस्सेव हेतु प्रयतेत कोविदो तल्लभ्यते भ्रमताम उपर्यत। कि बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ऐसी चीज प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो उसको ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक कहीं भी ना मिले, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और जिसको ये वस्तु प्राप्त हो गई है वो सफल है, और जिसको प्राप्त नहीं हुई है उसको प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, पराभावस्तावत अबोध जाता यावन्न जिज्ञासा आत्म तत्व, है ना। जिसने भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं किया और जिज्ञासा करने के बाद भगवत प्राप्ति नहीं हुई, उसका जीवन क्या है, फेलियर, वो सक्सेस व्यक्ति नहीं है। आज बहुत सक्सेस सेमिनार होते हैं ना, उनको ये दो श्लोक बता दीजिए, एक तो तीन श्लोक है ना, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, और भागवतम के ये दो श्लोक प्रहलाद महाराज का और नारद मुनि का, ये सफलता बता रहे। तो इस सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए, और जिसने प्राप्त किया वो सफल है। भौतिक दृष्टि से वो कैसा भी हो सकता है, वही दृष्टिकोण, दृष्टिकोण हमको बदलना है। कृष्ण भावना में मतलब दृष्टिकोण बदलना है, हमको भौतिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टिकोण बनाना है। भौतिक दृष्टिकोण में देखेंगे तो हमारे ये हमारे ये पैरामीटर होंगे। आज सक्सेस की परिभाषा ये है, आज जैसे मतलब पैसा कमाना है तो वो एक सक्सेस की परिभाषा है, देश के लिए जान देना है वो सक्सेस की परिभाषा है। ये गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, उनका वैराग्य का जीवन है तो सक्सेस है। तो ये सक्सेस तो बदलता रहेगा, जैसे जो बहुत उनके पास बहुत पैसा जाता है तो अब क्या करें पैसे, तो चैरिटी में देते हैं। ये जो बिल गेट्स, उसका ही मैंने पढ़ा था, तो वो चैरिटी देना चालू कर दिया। उसको अभी उसके पास पैसा आ गया, एक सेटिस्फेक्शन है, लेकिन दूसरों को बांटने में उसको और सेटिस्फेक्शन होगा। तो वो ये जो सक्सेस की परिभाषा क्या है हमेशा बदलती रहे, रियल सक्सेस क्या है वो शास्त्रों से देखना, और उस सक्सेस के लिए हमको प्रयास करना। ठीक है, अभी हम समाप्त करेंगे। और अगले सेशन में देखेंगे कृपा मतलब क्या होता है, प्रेम मतलब क्या होता है, भाव मतलब क्या होता है, सिद्धि मतलब क्या होता है, ये सब की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसे कोई परिभाषा, किसी को प्रश्न है? तो आज हमने कौन कौन सी परिभाषा देखी, इसको रिकैप करेंगे। ब्रह्म, ब्रह्म क्या है बताएंगे? ब्रह्म
जिससे हर चीज की उत्पत्ति
है, नहीं भगवत गीता के अनुसार
अक्षरम
ब्रह्म परम है ना, कि जो इनडिस्ट्रक्टिबल है और प्रकृति की तीन गुण से ऊपर है जीव, उसको हम ब्रह्म बोलते हैं। अध्यात्म की परिभाषा स्वभाव अध्यात्म उच्चते है ना, हमारा जो वास्तविक स्वभाव है उसमें स्थित होना क्या है? अध्यात्म। कर्म की परिभाषा जो नेक्स्ट बॉडी डेवलप हो रही है वो क्या है? कर्म। फिर चौथी परिभाषा आदि भूत, संसार। संसार की परिभाषा क्या देखी? मैं और मेरापन, अहम ममेति आमी अमार, वो क्या है? संसार। और अंत में क्या देखा? लक्ष्य या सक्सेस, उसी क्या परिभाषा है?
जो
ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक कहीं भी ना मिले। और दूसरी परिभाषा क्या है? ऐसी चीज प्राप्त करना जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा न रहे। हाँ, जगत या संसार जो हमेशा चलता रहता है ना, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का चक्र जो चलता रहता है उसको जगत बोलते हैं। हाँ, डुअर उसी में आया था, प्राइमरी डुअर और सेकेंडरी डुअर। तो हम सेकेंडरी डुअर हैं।